मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 14 सितंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और चूंकि दो दिनों के बाद आज आप सबसे भेंट हो रही है, इसीलिए एक बार और आप सभी का आत्मीय अभिनंदन भी करता हूं। आप लोगों को याद है कि फिलहाल हम लोग नजरिए पर बात कर रहे हैं और नजरिए के उस बिंदु पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने नजरिए को दुरुस्त कर सकते हैं। ये आप पहले देख चुके हैं कि ज्यादातर हमारा जो नजरिया होता है वो बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है। ज्यादातर लोगों का ऐसा होता ही रहता है, इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों का जो जीवन होता है वो दूसरों के हाथों से नियंत्रित होता रहता है। दूसरे दूसरों के जीवन को नियंत्रित करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर आपका ही नियंत्रण हो, तो बहुत जरूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मेरा नजरिया है वो मेरे द्वारा ही निर्मित हो, मैं ही अपने नजरिए का निर्माण करूं, न कि कोई दूसरा। हाँ, दूसरा आपको इनपुट देता है, यानी आपको तथ्य उपलब्ध कराएगा, एक वातावरण बनाएगा, लेकिन हम उसके गुलाम नहीं हैं। तो हम कैसे अपने आप को उस गुलामी की दासता से मुक्त कर सकते हैं, अपने एक नए और सच पूछे तो सही नजरिए का निर्माण कर सकते हैं, और यह करके अपने जीवन को ज़्यादा वैज्ञानिक, ज़्यादा सरल और ज़्यादा आप यूं कह लीजिए उल्लासपूर्ण बना सकते हैं, इसी के बारे में हम अभी थोड़ी बातें कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जो मैंने बात की थी उसका संबंध पूरी तरह से हमारे एक भावनात्मक आवेश पर था कि हमें अपनी चीज अच्छी लगती है। आपको ध्यान होगा कि मैंने जलेबी फिल्म के अंतर्गत उसका जो हीरो है उसके बारे में बताया था कि किस तरह से वो पुरानी दिल्ली को बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करता है, और फिर एक्ट्रेस कहती है, यार मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम इन सब चीजों को कैसे इतना खूबसूरत बना देते हो। तो यहां पर उसकी भावना जुड़ी हुई है, जो कि उसका अपना स्थान है, अपना एरिया है, वहां पला बड़ा है, तो वहां से उसका जुड़ाव है। और हम सब जानते ही हैं कि जिनसे हम जुड़ाव महसूस करते हैं वो फिर चाहे चीजें जैसी भी हो, व्यक्ति कैसा भी हो, हम उससे प्रेम करते हैं। और सीधी सी बात है कि जहां प्रेम होगा वहां वह फिर अच्छी लगनी ही लगनी है। और यूं कह लीजिए कि जहां चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं वहां मान करके चलिए कि ये 24 कैरेट का प्रेम नहीं है, वहां कुछ न कुछ खोट तो है। तो हमने भावना वाले पक्ष पर बातें कर ली हैं। अब मैं तर्क पर आता हूं। भावना के बिल्कुल विरोध में दूसरी जो बिंदु है, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है तर्क, लॉजिक। और इस लॉजिक को मैं सच पूछे तो जो हमारी अपनी फिलॉसफी है या धर्म के प्रति हमारी जो अभिरुचि है या धर्म का जो हमारे ऊपर प्रभाव है, और फिर उस धर्म का हम कैसे एक बेहतर तरीके से तर्क सम्मत इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख कर करने जा रहा हूं। और बिल्कुल एक सच्ची घटना से, और विश्वास कीजिए कि इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। फ्रेंड्स, मेरे जो फादर इन लॉ ससुर साहब थे, 23 मार्च को उन्हें अस्पताल में हम लोगों ने भर्ती किया, जो हम लोगों के घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। और आपको मालूम है कि 25 मार्च को पूरे देश में तालाबंदी की शुरुआत कर दी गई, और कोरोना का जो आतंक था उस समय, सोचिए, आप सब तो इसके भुक्तभोगी ही हैं, कितना जबरदस्त था। शहर में सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं, सड़कें सूनी हैं, सामान मिल नहीं रहा है, लोग अंदर से बहुत विचित्र किस्म का केवल घुटन ही महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि भयानक रूप से डरे हुए भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी कोरोना हो जाए, क्योंकि उस समय इलाज की भी अभी जैसी सुविधाएं नहीं थी। जबरदस्त किस्म का भय। और अब आप सोच करके देखिए कि मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट है, और ऐसा हॉस्पिटल जहां हमें रोज कई कई बार आना जाना है, राइट? ये सिचुएशन, और वो सिचुएशन ऐसी है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, और वो हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में लगातार पेशेंट आ रहे हैं, उन पेशेंट के बीच में रोज आना, हमें आना और जाना है, एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो सप्ताह के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 महीने का यह क्रम जारी रहा, 2 महीने का क्रम। अब आप इस कर्म को निभाएंगे कैसे, इस धर्म को निभाएंगे कैसे, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते, उस अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, और अगर व्यवस्था भी होती तो क्या आपका मन, आपका दिमाग इस बात को अलाउ करेगा, आपको अनुमति देगा कि नहीं आप उन्हें अकेला छोड़ दीजिए? सवाल ही नहीं उठता। और वो इतने प्यारे व्यक्ति थे, अपने घर परिवार वालों को इतना चाहने वाले थे कि अगर हम छोड़ देते तो उस फिर अपराध बोध को लेकर के जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे, आपको जाना है, करना है, बार बार जाना है, खाना लेकर के जाना है, वहां रुकना भी है, वहां भी जो दूसरी चीजें हैं वो देखनी है, लिफ्ट से ऊपर जाना है, वहां जो दूसरे पेशेंट नीचे बैठे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर थे हम लोग, नीचे पेशेंट बैठे हुए, उनके बीच से जाना है, सब कुछ करना है आपको उसी तरीके से जिस तरीके से कि आप इससे पहले करते रहे हैं, लेकिन आपको करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो अब आप देखिए कि नजरिया तो डरा हुआ है, अब क्या किया गया, बस इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरी पत्नी शुरू से ये कहती रही कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी कि जिसकी भी रक्षा ईश्वर करता है उसे कोई भी नहीं मार सकता। वो इस सिद्धांत को लेकर के, इस विश्वास आस्था को लेकर के अपने काम में लगी रही, राइट। मैंने अपने दिमाग में एक बिंब तैयार किया, एक इमेज तैयार किया, और वो इमेज पूरी तरह से उस तरह की इमेज थी जो साईं बाबा को आप देखेंगे कि एक छाते के नीचे वो चलते रहते, झुके हुए हैं और एक व्यक्ति छाता लिए हुए है। वही बिंब मेरे दिमाग में आया और मैंने अपने दिमाग में एक बिंब तैयार किया कि ईश्वर छाता लेकर के मेरे साथ खड़ा है, हमारी सिस्टर निर्मला डॉली है, वो आई हुई थी गुड़गांव से लगातार, वो भी बाहर आ जा रही थी, उनके साथ खड़ा हुआ है, मेरी मदर इनला के साथ वो खड़ा हुआ है क्योंकि मदर इनला को भी हॉस्पिटल आना जाना पड़ता था, हम सबके जितने भी लोग हैं, बीच बीच में मेरी पत्नी प्रीति भी जाती थी, बेटा भी जाता था, बहू भी जाते, सब जाते ही थे, तो सब भगवान के द्वारा लिए गए छाते के नीचे खड़े हैं और वो भगवान ने अपने हाथ में थाम रखा है। ये एक बिंब मैंने तैयार किया, इससे आत्मविश्वास मिला। लेकिन क्या हमने सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दिया? बस यहीं पर आपको ध्यान देना है। ये तो धर्म की चीज हो गई, पता नहीं है नहीं है, लेकिन आस्था तो है, वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो दे रहा है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है आपको वो भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब हम इसके भरोसे रह करके और बिल्कुल लापरवाही बरतने लगे। जो भी एहतियात बरते जाने चाहिए वो सारे एहतियात हमने बरते। हॉस्पिटल जाने के बाद वहां बार बार आप हाथ धोएंगे, अगर लिफ्ट से नीचे उतर के फिर आप ऊपर जाते हैं तो आप हाथ धोएंगे, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहेंगे, वहां के जूते चप्पल बिल्कुल अलग रहेंगे, और अस्पताल से लौटने के बाद वो जो पहन करके आप कपड़े गए थे उन्हें बिल्कुल बाहर छोड़ देंगे, जूते चप्पल भी आपके बिल्कुल बाहर रहेंगे, घर आकर के बाकायदे आप हाथ धोएंगे, और जो भी इसके लिए प्रिकॉशनरी मेडिसिन होनी चाहिए, जैसे विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, हल्दी का दूध लेना है, ये सारी चीजें हम लेते रहे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी। मुझे नहीं मालूम इसमें से किसने काम किया, मुझे केवल इससे मतलब है कि काम किया, और मैं ये मान करके चलता हूं कि दोनों ने काम किया। मुझे नहीं मालूम दोस्तों कि भगवान रक्षा करता है या नहीं करता है, वो छाता लेकर के खड़ा रहता है या नहीं रहता है, था या नहीं था मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन अगर मुझे लगता है कि इससे मुझे ताकत मिल रही है, मेरा जो नजरिया भयभीत रहने वाला है उस भय में मुझे थोड़ी सी छूट मिल रही है, आत्मविश्वास आ रहा है, मैं उस भय से लड़ने की ताकत प्राप्त कर रहा हूं, तो उसमें हर्ज क्या है? और हम लोगों ने ऐसा ही किया। और आप सबकी शुभकामनाओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से वो वक्त गुजर गया, अच्छे से गुजर गया। ठीक है, हमारे ससुर साहब नहीं रह पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम हम लोग कोरोना से बचे रहे और हम लोग अपने दायित्व या यूं कह लीजिए धर्म का भी निर्वाह कर पाए। अब आप देखिए कि यहां दोनों चीजें हैं। धर्म ने हमें आंतरिक शक्ति प्रदान की, आत्मविश्वास प्रदान किया, और लेकिन उसका जो वैज्ञानिक, जो तर्कवादी पक्ष था उसे भी हम लगातार फॉलो करते रहे, और इस तरीके से हमारा नजरिया भयभीत होने की जगह एक योद्धा का नजरिया बना रहा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जो तर्क की मांग करती हैं, तर्क सम्मत तरीके से जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमें रास्ता मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इसी के साथ ही अब मुझे आज की अपनी इस बात को समाप्त करना होगा। आप सबको मेरा अभिवादन, नमस्कार।